विभाजन श्रीमद् भागवत के नवम स्कंध चतुर्थ अध्याय श्लोक नंबर 41 से 44 तक पाठ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपमान। तो पहले हम 41 से 43 श्लोक तक पाठ कर लेंगे, उसके बाद 44 श्लोक पर जाएंगे। इत्यापाप्रस्य राजर्षि चिन्तयन् मनसाच्युतम् प्रत्यचष्टकुरुश्रेष्ठ दीजागमनमेव सः। हे कुरुश्रेष्ठ, थोड़ा सा जल पीकर राजा अम्बरीश ने अपने मन में भगवान का ध्यान किया और फिर वे महान योगी दुर्वासा मुनि के वापस आने की प्रतीक्षा करने लगे। दुर्वासा यमुना कुलात् कृतावश्यक आगतः राज्ञाभिनन्दितस्तस्य बुभुधे चेष्टितं धिया। दोपहर के समय संपन्न होने वाले अनुष्ठानों को संपन्न कर लेने के बाद दुर्वासा मुनि यमुना के तट से वापस आए। राजा ने अच्छे प्रकार से उनका स्वागत किया, किंतु दुर्वासा मुनि ने अपने योग बल से जान लिया कि राजा ने उनकी अनुमति के बिना जल पी लिया है। मन्युना प्रचलत गात्रो भ्रुकुटी कुटिलाननः बुभुक्षितश्च सुतरं कृतंजलिं अभासत। भूखे कांपते शरीर, टेढ़े मुंह और क्रोध से टेढ़ी भौंहें किए दुर्वासा मुनि ने अपने समक्ष हाथ जोड़ खड़े राजा अम्बरीश से क्रोध पूर्वक इस प्रकार कहा। अब श्लोक नंबर 44 पाठ करेंगे सभी लोग। अहो अस्न संसस्य श्रीवन्मत्तस्य पश्यत धर्म व्यतिक्रमं विष्णु अभक्तायि समानिनः अभक्तस्य समानिनः। अहो अस्यानुशंसस्य श्रीवन्मत्तस्य पश्यत धर्म व्यतिक्रमं विष्णु अभक्तस्य समानिनः। अहो अस्यानुशंसस्य श्रीवन्मत्तस्य मापश्यत धर्म व्यतिक्रमं विष्णु अवक्तस्य ईशमानिनः। अहो ओ अस्य इस पुरुष का नृशंसस्य इतने निर्दय का श्रिया उन्मत्तस्य अपने ऐश्वर्य के कारण गर्वित पश्यत देखो तो धर्म व्यतिक्रमम धार्मिक सिद्धांतों का उल्लंघन विश्व अभक्तस्य जो विष्णु का भक्त नहीं है उसका ईशमानिना अपने आप को ईश्वर मानने वाला। ईश्वर का अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। ओ जरा इस निर्दय व्यक्ति का आचरण तो देखो, यह भगवान विष्णु का भक्त नहीं है, यह अपने ऐश्वर्य एवं पद के गर्व के कारण अपने आप को ईश्वर समझ रहा है। देखो ना, इससे धर्म के नियमों का उल्लंघन किया है। तात्पर्य, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक में दुर्वासा मुनि द्वारा कहे गए वचनों का पूरा अर्थ ही बदल दिया है। दुर्वासा मुनि ने नृशंस शब्द का व्यवहार राजा को क्रूर बताने के लिए किया है, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका अर्थ यह लगाते हैं कि राजा के चरित्र की महिमा का गान सारे स्थानीय लोगों ने किया। उनके अनुसार नृ का अर्थ है सारे स्थानीय लोग तथा संशय का अर्थ है अम्बरीश का, जिसके चरित्र का गायन किया गया। इसी प्रकार जो अत्यंत धनी होता है वो अपने धन के कारण पागल हो जाता है, अतः वो श्रेया उन्मत्तस्य कहलाता है। किंतु श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार यद्यपि महाराज अम्बरीश अत्यंत ऐश्वर्यवान राजा थे, किंतु वे दान के पीछे पागल नहीं थे। ये दान नहीं होगा, धन होना चाहिए। किंतु वे धन के पीछे पागल नहीं थे, क्योंकि वे भौतिक ऐश्वर्य के पागलपन को पहले ही पार कर चुके थे। इसी प्रकार ईश्वर मानना का अर्थ यह लगाया है कि वो भगवान का इतना आदर करता था कि दुर्वासा मुनि के ऐसे सोचने के बावजूद भी उसने एकादशी पारण के नियम का उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि उसने केवल जल ग्रहण किया था। इस प्रकार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अम्बरीश महाराज के सारे कार्यों को सराहा। श्रीमद् भागवत के इन श्लोकों में महाराज अम्बरीश का एकादशी पारण विधि का अनुसरण करते हुए जल पी लेना और दुर्वासा मुनि के आगमन की प्रतीक्षा करना और दुर्वासा मुनि का क्रोधित होकर महाराज अम्बरीश को अपशब्द कहना है, इसका वर्णन है। तो जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे कि अम्बरीश महाराज धर्म संकट में पड़े हुए थे, कि घर पर अतिथि आए हुए हैं और अतिथि को अभी तक उन्होंने भोजन प्रदान नहीं किया है, जबकि उन्होंने निमंत्रित किया है उनको भोजन के लिए। अतिथि अब स्नान करने गए हैं, आने के पश्चात भोजन करेंगे, किंतु इसी के बीच पारणा का समय व्यतीत हो रहा है। तो एकादशी पारणा के समय के भीतर यदि कोई पारणा नहीं करता है, अर्थात एकादशी व्रत का भंग नहीं करता है, तो व्रत का फल उसको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए व्रत के साथ साथ पारणा विधि का भी अनुसरण करना आवश्यक है कि किस समय के भीतर व्रत का पारणा किया जाए। तो महाराज अम्बरीश इसी धर्म संकट में पड़े हुए थे कि अब तक अतिथि सत्कार नहीं हुआ है और वो कैसे व्रत भंग करने के लिए, पारणा करने के लिए कैसे वो अन्न ग्रहण करे। इसी धर्म संकट में पड़कर उन्होंने ब्राह्मणों से कुछ आवश्यक उपदेश प्राप्त करना चाहा था। तो ब्राह्मणों से जिज्ञासा की थी उन्होंने कि इस धर्म संकट में मेरे लिए क्या करना उचित होगा, किंतु ब्राह्मणगण इस धर्म संकट का समाधान करने में असमर्थ थे और स्वयं इस धर्म संकट का समाधान महाराज अम्बरीश ने ही किया, क्योंकि वो भगवान के परम भक्त थे। जैसे शास्त्र में बताया गया है कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो बहुत बुद्धिमान होते हैं और भगवान स्वयं उनको बुद्धि प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान सभी के हृदय में बैठे हुए हैं परमात्मा के रूप में। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानं अपोहनं च। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सभी के हृदय में मैं बैठा हुआ और मुझसे ही व्यक्ति का ज्ञान स्मरण शक्ति और विस्मरण शक्ति व्यक्ति को प्राप्त होती है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण हृदय में बैठकर व्यक्ति को आवश्यक ज्ञान प्रदान करते हैं, स्मरण शक्ति प्रदान करते हैं और उसको भुला भी देते हैं। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का ज्ञान बुद्धि स्मरण शक्ति और विस्मरण शक्ति ये भगवान के ऊपर निर्भरशील है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं या बहुत हमारी स्मरण शक्ति प्रखर है, उसके लिए हम गर्व का अनुभव करते हैं, किंतु हम नहीं जानते हैं कि इसका नियंत्रण किसके हाथ में है। जैसे रिमोट कंट्रोल, तो भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे हुए हैं और ये नियंत्रित करते हैं किसको कितनी बुद्धि देंगे, किसको कितनी स्मरण शक्ति देंगे, किसको कहाँ भुला देंगे, वो भूल जाएगा। इसलिए व्यक्ति को जीवन धारण करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, शुद्ध बुद्धि को प्राप्त करने के लिए, स्मरण शक्ति को प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण के ऊपर निर्भरशील रहना आवश्यक है, उनकी कृपा प्राप्त करना आवश्यक है। कभी कभी होता है कि जो छात्र होते हैं तो ये लोग बहुत परिश्रम करते हैं रात दिन, कभी कभी रात उजागर रह के पढ़ते हैं और जब एग्जाम में जाकर बैठते हैं भूल जाते हैं, तो उनको कौन भुला देता है, भगवान नियंत्रित करते हैं। तो हम अपने बल, अपनी बुद्धि या केवल अपनी प्रचेष्टा से हम जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते, जब तक हमें हमारी प्रचेष्टा के साथ भगवान की कृपा प्राप्त न हो। इसलिए प्रचेष्टा के साथ साथ भगवान की कृपा पर भी हमें निर्भरशील रहना आवश्यक है। यही जीवन में संसिद्धि को प्राप्त करा सकता है। भगवान की कृपा ही हमें जीवन के लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। इसलिए हर व्यक्ति को जीवन धारण करने के लिए भगवान के ऊपर निर्भरशील रहना आवश्यक है। ये बुद्धि स्मरण शक्ति की बात छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि जीवन धारण करने के लिए जो नास्तिक लोग भी हैं, जिनको भगवान पर विश्वास भी नहीं है, फिर भी ये भगवान की कृपा के बिना एक मुहूर्त भी जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि जीवन धारण करने के लिए श्वास प्रश्वास लेना आवश्यक है, सांस लेना आवश्यक है, और सांस में जो वायु हम ग्रहण करते हैं उस वायु को कौन प्रदान करता है, किसने सृष्टि की है वायु, तो भगवान ने सृष्टि की है। वायु, जल, भूमि, अग्नि, ये सब भगवान की सृष्टि है, हमने इसकी सृष्टि नहीं की। और भगवान यदि चाहे वायु चलाचल को बंद कर दे, ठीक है, तुम लोग मुझे नहीं मानते हो, नास्तिक हो, नास्तिक बन रहे हो, ठीक है, तुम जीवन धारण करो, हम वायु चलाचल बंद कर देते हैं, तो हम जीवन धारण नहीं कर सकते। ध्रुव महाराज ने तपस्या की थी और वायु के प्रवाह को रोक दिया सारे संसार, तो सारे प्राणी अतिष्ट हो गए, यहां तक कि देवता लोग भी कष्ट, उन्होंने कष्ट का अनुभव किया, क्योंकि वायु के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता, भगवान के पास पहुंचे। तो इस प्रकार कभी कभी असुर लोग भी ऐसी तपस्या करते हैं, और उसमें भी लोगों का श्वास रुद्ध हो जाता है कठोर तपस्या से। इसलिए भगवान की कृपा के बिना एक पल भी जीवित रहना हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति यह जानकर सदा सर्वदा भगवान की कृपा पर निर्भरशील रहता है, कृपा प्रार्थी होता है, भगवान से प्रार्थना करता है, कृपा की भिक्षा मांगता है, ये बुद्धिमान व्यक्ति का कार्य है। इसलिए जो भक्तगण है वो बुद्धिमान है, वो जानते हैं कि भगवान की कृपा के बिना वो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए भगवान के चरणों में वो अपने को समर्पित करते हैं। तो महाराज अम्बरीश उसी प्रकार भगवान के समर्पित भक्त थे, इसलिए भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगं तं येन मां उपयन्ति। तो जो लोग सदा सर्वदा सतत युक्तानंग भजतांग प्रीतिपूर्वक, जो प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करते हैं, मैं उनको बुद्धि देता हूं जिससे कि वो मेरे पास पहुंच सके, मेरे पास आ सके। तो अम्बरीश महाराज जो धर्म संकट में पड़े हुए थे और ब्राह्मण लोग, लगता है कि वे लोग इतना समर्पित नहीं थे, यद्यपि भगवान के संबंध में उनको ज्ञान था, तो ये लोग इसका कोई उपचार नहीं बता सके कि इस धर्म संकट में महाराज अम्बरीश को क्या करना चाहिए। तो महाराज अम्बरीश ने स्वयं इसका उपाय निकाला और उन्होंने ब्राह्मणों से अनुमति ली कि इस धर्म संकट में पारणा एकादशी व्रत का भंग या पारणा करना इसी से संभव हो सकेगा जब वो कुछ जल ग्रहण करे, क्योंकि वो बिना जल के निर्जला एकादशी व्रत किए हुए थे, इसलिए जल ग्रहण करने से एकादशी व्रत का भंग हो सकता है। और जल ग्रहण करने पर कोई ये नहीं कहेगा कि उन्होंने खा लिया, पी लिया है अवश्य, किंतु खाया नहीं, जल पिया जाता है, बंगाल में खाया जाता है। तो हम लोग पीते हैं, जल पीते हैं, तो कोई ये नहीं कहता है कि किसी ने खा लिया जल पीने के उपरांत। तो जब महाराज अम्बरीश ने कहा कि आप लोग यदि मुझे अनुमति दें, मैं थोड़ा जल ग्रहण करूं, तो ब्राह्मणों ने अनुमति दे दी, हाँ ये ठीक है, आप इससे आपका एकादशी परणा भी हो जाएगा और अतिथि सत्कार में भी बाधा उत्पन्न नहीं हो, आपकी धर्म की हानि नहीं होगी क्योंकि आपने अतिथि का सत्कार नहीं किया। तो महाराज अम्बरीश ने जल ग्रहण कर लिया और पारणा करने के लिए उन्होंने जल तो ग्रहण कर लिया, फिर भी अपने मन में वो सोच रहे थे कि इस स्थिति में मैं और क्या कर सकता था, जबकि अम्बरीश महाराज जल तक भी ग्रहण करना नहीं चाहते थे। दुर्वासा मुनि को उनका सत्कार करने से पहले अम्बरीश महाराज जल भी ग्रहण करना नहीं चाहते थे, किंतु जबकि वो धर्म संकट में पड़े हुए थे और एकादशी का पारण का समय व्यतीत हो रहा था, इसलिए करना आवश्यक हो गया था, क्योंकि ये भगवान का आदेश है कि एकादशी व्रत का पारण निश्चित समय पर करना आवश्यक है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जल पाने के पश्चात उन्होंने भगवान का ही ध्यान किया, अपने मन में भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया। इसका अर्थ है कि भगवान का स्मरण करके यद्यपि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, इसमें धर्म की हानि नहीं हुई, फिर भी स्वयं अम्बरीश महाराज ऐसा सोच रहा है कि इस धर्म संकट में मैं क्या कर सकता था, इसलिए प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। इसलिए भगवान का ध्यान कर रहे थे, उनके चरण कमल का ध्यान कर रहे थे। और भगवान के चरण कमल का ध्यान करने का अर्थ क्या है, भगवान के नाम उच्चारण का अर्थ क्या है, कि व्यक्ति का कोई पाप नहीं रहता, वो पाप शून्य हो जाता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। तो यदि किसी भी कार्य में, कोई धार्मिक कार्य में बाधा उत्पन्न हुई हो, तो उस धार्मिक कार्य का समापन कैसे हो सकता है। जैसे जब बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे तो भगवान वामन देव तीन पद भूमि मांगने के लिए आए थे और उन्होंने मांग भी लिया और बलि महाराज ने, बलि महाराज सर्वस्व प्रदान किए भगवान वामन देव को, और बाद में भगवान वामन देव ने बलि महाराज को सुतल लोक को भेज दिया, जो इंद्र के ऐश्वर्य से भी बढ़कर था, सुतल लोक में स्वर्ग से भी बढ़कर ऐश्वर्य प्राप्त हुआ बलि महाराज को। तो शुक्राचार्य ने प्रश्न पूछा था भगवान वामन देव से, ना भगवान वामन देव ने शुक्राचार्य से प्रश्न पूछा कि शुक्राचार्य जी ये बताइए कि मेरे आने पर यहाँ पर बलि महाराज जो यज्ञ कर रहे थे उस यज्ञ में बाधा उत्पन्न हो गई, क्योंकि हमने दान मांगा, बलि महाराज ने अपना सर्वस्व अर्पित किया, तो इसमें बाधा, यज्ञ में बाधा उत्पन्न हो गई, यज्ञ के बीच ये सब हो रहा था, तो आप बताइए बलि महाराज का यज्ञ अब अधूरा रह गया है, ये कैसे संपन्न होगा। मैं चाहता हूं कि बलि महाराज का यज्ञ संपूर्ण हो, क्योंकि यही बलि महाराज की इच्छा थी, वो मेरी प्रतिविधान के लिए यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे। तब शुक्राचार्य ने बताया कि प्रभु इस यज्ञ में जो बाधा उत्पन्न हुई है, यज्ञ को पूर्ण करने के लिए एक ही समाधान है, और वो एक ही समाधान क्या है, आपका नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। तो भगवान का नाम संकीर्तन मात्र से सारा कार्य पूर्ण हो जाता है। उसमें कोई कमी नहीं रहती। इसलिए हर व्रत अनुष्ठान में नाम संकीर्तन का विधान है। तो अब अम्बरीश महाराज भगवान का नाम ले रहे हैं, उनके चरण कमलों का ध्यान कर रहे हैं। यद्यपि उनसे कोई अपराध नहीं हुआ है, फिर भी अम्बरीश महाराज इस प्रकार सोच रहे हैं कि हमने बाध्य होकर जल ग्रहण किया, तो भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, उनके चरण कमल का ध्यान कर रहे हैं। तो इस प्रकार जब अम्बरीश महाराज कर रहे थे, उस समय दुर्वासा मुनि ने अपना जो मध्यान्ह कृत्य समाप्त करके वो आए अम्बरीश महाराज के राजप्रसाद। अम्बरीश महाराज प्रतीक्षा कर रहे थे दुर्वासा मुनि, तभी तक उन्होंने और कोई खाद्य ग्रहण नहीं किया था, केवल जल ही ग्रहण किया था। तो दुर्वासा मुनि जब आए, अम्बरीश महाराज तुरंत उठकर उनका आदर सत्कार किया, उनको बैठने के लिए आसन प्रदान किया। तो जब अम्बरीश महाराज इस प्रकार कर रहे थे और उनको भोजन की व्यवस्था करने जा रहे थे, तो दुर्वासा मुनि, क्योंकि वो योगी थे और उनको सिद्धियां प्राप्त थी, तो दुर्वासा मुनि ने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से वो जान लिया उन्होंने कि ये अम्बरीश महाराज ने मेरी अनुपस्थिति में जल ग्रहण किया। उनको पता चल गया, और जैसे ही पता चला कि इन्होंने मेरी अनुपस्थिति में मेरे सत्कार किए बिना जल ग्रहण किया है, तुरंत दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए। और क्रोधी मुनि के रूप में तो वो प्रसिद्ध थे ही, दुर्वासा मुनि। जैसे हम भौतिक संसार में देखते हैं, कोई व्यक्ति क्रोधित हो जाता है तो हम तुरंत बोल लेते हैं, ये दुर्वासा मुनि की तरह तुम क्यों क्रोधित हो रहे हो, दुर्वासा मुनि का उदाहरण दे देते हैं। या छोटी छोटी बातों पर जो क्रोधित हो जाता है उसको बोलते हैं ये दुर्वासा। तो दुर्वासा मुनि का उदाहरण देते हैं। तो दुर्वासा मुनि तुरंत क्रोधित हो गए, तो क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। यद्यपि बहुत बड़े तपस्वी थे, किंतु क्रोध पर उनका नियंत्रण नहीं था, ऐसा लग रहा। जो तपस्या करता है उसको 6 शत्रुओं पर नियंत्रण होना आवश्यक, और ये 6 शत्रु क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। 6 शत्रुओं पर नियंत्रण होना आवश्यक। और क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती। तो ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते उपजायते, संगात संजायते काम, काम क्रोध विजायते। तो जब कामना की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो दुर्वासा मुनि सोच रहे थे, वो क्रोधित क्यों हो गए कि ये मेरा सत्कार किए बिना इन्होंने जल ग्रहण कर लिया। ये नहीं सोचा कि जल ग्रहण करना कोई अपराध नहीं था अम्बरीश महाराज के लिए। दुर्वासा मुनि ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि अम्बरीश महाराज ने केवल जल ही ग्रहण किया है, इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ दिए बिना उन्होंने क्यों जल ग्रहण किया। तो दुर्वासा मुनि जब क्रोधित हो गए तो अम्बरीश महाराज तो समझ गए दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए। तो अम्बरीश महाराज क्या कर रहे थे उस समय, वो हाथ जोड़कर उनके सामने विनम्र भाव से खड़े थे। यही भक्तों का लक्षण होता है। कोई क्रोधित हो रहा है किंतु अम्बरीश महाराज हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हैं, उनके श्राप की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये भक्त का भक्त की विनम्रता है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुन अमानेन मानदेव कीर्तनीय सदा। यदि भक्त विनम्र नहीं है तो भगवान का नाम कीर्तन नहीं कर सकता। यदि भक्त सहिष्णु नहीं है, सहनशीलता का गुण उसमें नहीं है, वो भगवान का नाम कीर्तन नहीं कर सकता। यदि वो सदा सर्वदा दूसरों से सम्मान की आशा रखता है, दूसरों को सम्मान नहीं देता है, तो भगवान का नाम कीर्तन नहीं कर सकता। तो भगवान का नाम कीर्तन करने के लिए ये तीन योग्यताएं आवश्यक है कि भक्त को विनम्र रहना, सहनशील होना और अपने लिए सम्मान की आशा न करना और दूसरों को सम्मान प्रदान करना। तब जाकर हम नित्य निरंतर भगवान का नाम संकीर्तन कर सकते हैं। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश। भक्त में अहंकार ये शोभा नहीं देता। यदि भक्त या वैष्णव अहंकारी है तो वैष्णव नहीं हो सकता। और भगवान भी ऐसे भक्त पर प्रसन्न नहीं होता। यह अहंकार भक्ति मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। और यह अहंकार कैसे उत्पन्न होता है, ये जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री एधमान मदह पुमान। जब व्यक्ति उच्च कुल में जन्म ग्रहण करता है उसको ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है, धन प्राप्त हो जाता है, या वो अत्यधिक सुंदर होता है, या बहुत बड़ा विद्वान बन जाता है। तो ये चार चीजें व्यक्ति में अहंकार की वृद्धि करती है। धनवान, रूपवान और ज्ञानवान और उच्च कुल में जन्म, ये चार चीजें व्यक्ति में अहंकार की वृद्धि करती है। तो अब महाराज अम्बरीश सम्राट थे, ऐश्वर्य के अधिकारी थे, विद्वान थे, यशस्वी थे, परम सुंदर थे, उच्च क्षत्रिय कुल में उनका जन्म हुआ था, फिर भी उनको अहंकार स्पर्श नहीं कर रहा था। तो भगवान कहते हैं कि यदि ये चार चीजें किसी को प्राप्त हैं और उसमें अहंकार नहीं है तो जान लेना चाहिए कि उस व्यक्ति पर मेरी कृपा है। अर्थात भगवान की जिस व्यक्ति पर कृपा होती है, ये चार चीजें होने पर भी उसमें अहंकार का उदय नहीं होता। और जिस पर कृपा नहीं है उस पर अहंकार का उदय होना स्वाभाविक है। तो महाराज अम्बरीश तो अत्यंत विनीत स्वभाव के थे, इसलिए हाथ जोड़कर हम दुर्वासा मुनि के सामने खड़े थे। और जब दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए, उनको अहंकार था। क्यों अहंकार था? को अपने को विद्वान, बहुत बड़े मुनि मान रहे थे, योग शक्ति के अधिकारी मान रहे थे, इसलिए उनको अहंकार हो गया। तो जब अम्बरीश महाराज ने जल पी लिया, तो उन्होंने सोचा कि हो मेरा सत्कार किए बिना इन्होंने जल पी लिया, इसलिए क्रोधित हो गए। तो उन्होंने क्या किया, जब वो क्रोधित हो गए, मन्युना प्रचलत गात्र, उनका शरीर कांपने लगा। जब व्यक्ति क्रोधित हो जाता है तो कुछ शारीरिक लक्षण दिखाई पड़ते हैं, उससे पता चल जाता है कि व्यक्ति कुछ बोले बिना ये पता चल जाता है कि ये क्रोधित है। आंखें लाल लाल हो जाती है, शरीर कांपने लगता है, होंठ कांपने लगते हैं, वो कुछ बोलना चाहता है, क्रोध में गाली देना चाहता है। तो ये सब लक्षण, मुंह टेढ़ा हो गया, भौहें टेढ़ी हो गई। तो इस प्रकार दुर्वासा मुनि के शरीर में ये सब क्रोध के लक्षण प्रकट हो गए। अम्बरीश महाराज समझ गए कि अब मुनि क्रोधित है, ये श्राप देने वाले हैं, ये अवश्य श्राप प्रदान करें, क्योंकि इसके लिए प्रसिद्ध है दुर्वासा। तो श्राप को ग्रहण करने के लिए अम्बरीश महाराज हाथ जोड़कर खड़े हैं, ठीक है मुझसे यदि अपराध हुआ है, आप जो भी श्राप प्रदान करेंगे मुझे स्वीकार। यही भक्त का लक्षण है। और दूसरा कोई होता वो क्या करता, दुर्वासा मुनि श्राप दे रहे हैं, हम भी श्राप देंगे, जैसा कोई तैसा। ऐसा होता है ना संसार में, उसने मुझे गालियां दी, मैं भी उसको गालियां दी, बदला लो, क्योंकि दोनों में अहंकार का टक्कर होता है। दोनों में अहंकार है, जैसे एक पत्थर से दूसरा पत्थर बजेगा तो कैसा शब्द हो, बहुत बड़ा शब्द होता है। और कोई पत्थर हो और कोई फूल हो, फूल और पत्थर में टक्कर, तो उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा शब्द। तो अम्बरीश महाराज विनीत होकर खड़े थे हाथ जोड़कर, यद्यपि वो परम शक्तिशाली थे, भगवान की कृपा पात्र थे, भगवान की शक्ति उनके पीछे थी, यहां तक कि सुदर्शन चक्र अम्बरीश महाराज की सुरक्षा कर रहे थे। भगवान ने दे दिया था अपने सुदर्शन चक्र को अम्बरीश महाराज की सुरक्षा के लिए और उनके राज्य की सुरक्षा के लिए। तो अम्बरीश महाराज चाहते तो दुर्वासा मुनि के श्राप को काट सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो परम शक्तिशाली होकर भी उन्होंने विनीत भाव से दुर्वासा मुनि के श्राप को ग्रहण कर लिया। यही वैष्णवों का स्वभाव, भक्तों का स्वभाव। तो अम्बरीश महाराज भक्त श्रेष्ठ आदर्श स्थापित कर रहे हैं दूसरे भक्तों के लिए, वैष्णवों के लिए, कि वैष्णवों का आचरण कैसा होना चाहिए, वैष्णव कैसे सदाचार संपन्न हो। तो अब दुर्वासा मुनि पहले श्राप देने से पहले भर्त्सना कर रहे हैं अम्बरीश महाराज, किंतु कोई दोष दिखाएंगे तब तो जाकर श्राप देंगे ना। तो अम्बरीश महाराज का क्या दोष है कह रहे हैं, अहो अस्य नृशंसस्य, अरे देखो ये कितना बड़ा नृशंस है, निर्दय है, इसमें दया भाव नहीं है। तो ये तो गाली दे रहे हैं, भर्त्सना कर रहे हैं अम्बरीश महाराज की। अम्बरीश महाराज जो परम दयालु हैं, उनको ये निर्दय कह रहे हैं, जिनमें दया भाव नहीं है, कठोर है, कठोर स्वभाव वाले हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये मुझे मेरा सत्कार किए बिना उन्होंने जल पी लिया, इसलिए वो निर्दय है। इन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर लिया, और ये निर्दय क्यों बना है, हम पहले दुर्वासा मुनि की बात कह रहे हैं, उसके बाद हमारे आचार्यों की बात कहेंगे। तो कहते हैं श्रियो उन्मत्तस्य, इसमें ये निर्दयता का भाव क्यों आ गया, क्योंकि श्रेय अर्थात धन के कारण ये उन्मत्त हो गया, पागल हो गया, इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही। जो पागल हो जाता है उसकी बुद्धि काम नहीं करती, कभी हंसता है कभी रोता है पागल व्यक्ति, उसको एक बात पूछेंगे दूसरी बात बोलने लगेगा। और जो जिसके पास अत्यधिक धन हो जाता है वो भी उन्मत्त हो जाता है, किसको क्या बोलने लगता है, किसको क्या गाली देने लगता है पता नहीं चलता है उसको, क्योंकि उसमें अहंकार की वृद्धि हो जाती है। तो दुर्वासा मुनि कह रहे हैं कि ये निर्दय बन गया है, क्योंकि ये धन ऐश्वर्य को प्राप्त होकर ये उन्मत्त पागल सा हो गया। तो पागल व्यक्ति का दूसरों पर दया नहीं आती, जिसका जिसकी बुद्धि काम नहीं करी वो कैसे दूसरों पर दया करेगा। वो किसी को पीट सकता है, किसी को मार सकता है पागल व्यक्ति, इसलिए लोग डर के मारे पागल के पास नहीं जाते, उससे दूर रहते हैं। और किस समय क्या करेगा पता नहीं। तो कहते हैं अरे देखो ये कितना बड़ा निर्दय है, ये धन ऐसे कारण ये उन्मत्त हो गया है, पागल हो गया है, और पागल होने के कारण धर्म व्यतिक्रम, इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, इसलिए धर्म का इसने उल्लंघन किया। अतिथि सत्कार करना ये धर्म है, और मेरे सत्कार किए बिना इन्होंने जल पी लिया, तो धर्म का उल्लंघन हो गया। विष्णु और अभक्त से ईशमान, इसलिए ये राजा ये अपने को तो भगवान विष्णु का भक्त मानता है, किंतु सचमुच ये विष्णु का भक्त नहीं। दुर्वासा मुनि ने ये निष्कर्ष दे दिया, जबकि वो स्वयं भक्त नहीं थे, किंतु वो विचार कर रहे हैं कि कौन भक्त है कौन भक्त नहीं है। तो अम्बरीश महाराज कह रहे हैं कि ये भक्त नहीं है भगवान, क्योंकि ये अपने को ईश्वर मानेगा, ये अभक्त है, भगवान का भक्त नहीं है, और अपने को भगवान मान रहा है। क्योंकि जो अभक्त लोग हैं अपने को भगवान मानते हैं, भक्त लोग तो अपने को भगवान कभी नहीं मानते हैं, किंतु जो अभक्त हैं वे लोग मानते हैं अपने को भगवान। इसलिए दुर्वासा मुनि कह रहे हैं ये अभक्त है और अपने को भगवान मान रहा है। तो जब दुर्वासा मुनि इस प्रकार कह रहे थे अम्बरीश महाराज को, अम्बरीश महाराज चुपचाप खड़े थे हाथ जोड़कर, सब सुन रहे थे दुर्वासा मुनि जो कह रहे, कुछ नहीं बोल रहे थे, चुपचाप सहन करते जा रहे थे। उनकी भर्त्सना को। तो अब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दुर्वासा मुनि की भर्त्सनाओं का अलग अर्थ करते हैं, उसको उस भर्त्सना को पूरा बदल देते हैं प्रशंसा में, अम्बरीश महाराज की प्रशंसा में पूरा बदल देते हैं। जहां कहीं भी ऐसे भागवत में आता है, जैसे कंस ने कृष्ण की भर्त्सना की थी, शिशुपाल ने कृष्ण की भर्त्सना की थी, किंतु हमारे आचार्यों ने उन भर्त्सनाओं का अर्थ भगवान के यश में परिवर्तित कर दिया था। तो ये सरस्वती देवी बाक देवी है, तो बाक देवी एक अर्थ को अनेक अर्थ कर सकती है, और संस्कृत में ऐसा है, एक शब्द का अनेक अर्थ हो सकता है। ये संस्कृत भाषा का भाषा की ये महत्ता और लालित्य भी, संस्कृत भाषा इतनी महनीय भाषा है कि एक एक शब्द का कई अर्थ कर सकते हैं। 17, 18, 20 कई अर्थ हो सकते हैं एक एक शब्द। तो अब हम लोग देखेंगे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या अर्थ करते हैं। तो दुर्वासा मुनि ने महाराज अम्बरीश से कहा कि आप नृशंस अस्य नृशंस से, तो नृशंस शब्द का प्रयोग किया महाराज अम्बरीश के लिए। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसका दूसरा अर्थ निकाल के कहते हैं कि नृ का अर्थ है मनुष्य, नृ लोक मनुष्य लोक, नृ का अर्थ है मनुष्य, और संश वर्णन करना, संश का अर्थ है वर्णन करना, क्या वर्णन, यश वर्णन। तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज को जो नृशंस कह रहे हैं, वस्तुतः इसका अर्थ है कि वो यही कह रहे हैं कि अम्बरीश महाराज ऐसे महान हैं जिनका यश सारे लोग करते हैं, इनके यश का वर्णन सारे लोग करते हैं, ये इतने महान है। तो उसका अर्थ बदल ही गया कि वो कठोर नहीं है, महान है। तो संसन बना बोलिए, वर्णन करिए। तो श्रीमद् भागवत में ये शब्द आता है, कई बार आता है। तो सारे लोग जिनके यश का वर्णन करते हैं, बोलते हैं, और फिर उन्होंने कहा था कि श्रेय उन्मत्तस्य, जो धन के कारण जो उन्मत्त हो गए हैं, पागल हो गए हैं, तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका अर्थ कर रहे हैं, श्रेय अर्थात धन, ठीक है, ऐश्वर्य, उन्मत्त का अर्थ कर रहे हैं उत्मत्त उन्मत्त, ये संस्कृत में जो संधि होता है, उत्मत्त उन्मत्त, उत्मत्त मत्त अर्थात पागल, उत अर्थात जो पागल से ऊपर है, जो पागल नहीं, इसका अर्थ ये हो गया। जैसे उत्पथ, पथ अर्थात मार्ग, उत्पथ जो मार्ग से बाहर अलग, तो इसका अलग अर्थ हो गया। इसका अर्थ है कि अम्बरीश महाराज धन ऐश्वर्य के पीछे पागल नहीं थे, धन ऐश्वर्य के प्रति उनमें कोई आसक्ति नहीं। यद्यपि ये ऐश्वर्य संपन्न थे किंतु इन ऐश्वर्यों के प्रति, राज्य के प्रति, मान सम्मान के प्रति, घर परिवार के प्रति, पत्नी और संतानों के प्रति इनमें कोई आसक्ति नहीं थी। उनमें एकमात्र आसक्ति भगवान कृष्ण में थी। यही भक्त का लक्ष्य। यद्यपि अम्बरीश महाराज सम्राट थे, राज्य शासन कर रहे थे, ऐश्वर्यों से घिरे हुए थे, परिवार मित्रों से घिरे हुए थे, अपना कार्य संपादन कर रहे थे, किंतु किसी के प्रति आसक्त नहीं थे। तो धन उनको क्या पागल करेगा जो धन के प्रति आसक्त नहीं है। तो उससे वो ऊपर थे। तो इस प्रकार वो अनासक्त व्यक्ति थे। जो भगवान का भक्त होता है वो अनासक्त होता है। एकमात्र आसक्ति कृष्ण के प्रति होती है। और भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि संसार में हमें कैसे रहना है। हम जब संसार में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो हमें कैसे रहना है कि पद्म पत्रम लिबाम, जैसे कमल का पत्र पानी में रहता है, पानी में रहता है, पानी स्पर्श नहीं करता, जल स्पर्श नहीं करता। आप कमल के पत्ते के ऊपर जल डाल दीजिए, गिर जाए, रहेगा नहीं। तो उसी प्रकार हम संसार में रहते हुए, घर परिवार के बीच रहते हुए भी, अपना कर्तव्य संपादन करते हुए भी हम निर्लिप्त रहेंगे। घर संसार के प्रति आसक्त नहीं हो। हमारी एकमात्र आसक्ति भगवान कृष्ण के प्रति होनी चाहिए, तब जाकर हम भगवान कृष्ण के धाम को प्राप्त कर सकें। यदि हम संसार के प्रति आसक्त हैं, घर परिवार के प्रति आसक्त हैं, वही आसक्ति हमें पुनः यहाँ पुनर्जन्म प्रदान करे भौतिक संसार दुख भोग करने के लिए। तो अम्बरीश महाराज पूर्ण रूप से अनासक्त थे संसार में रहते हुए भी। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि उत्मत्त से, वो उन्मत्त नहीं थे, पागल नहीं थे, पागलपन से ऊपर थे, अर्थात वो तो जीवन मुक्त थे, मुक्त अवस्था में थे। धर्म व्यतिक्रम विष्णु अभक्त ईशा महानिन, कि उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने को ईश या भगवान माना, ईशा महानिन। तो इसका एक अर्थ तो जो अपने को ईश मानता है या भगवान मानता है, जिस अर्थ में दुर्वासा मुनि कह रहे थे, किंतु श्री विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ईश मानिन का अर्थ है कि ईश अर्थात भगवान को जो मानते हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं वो अपने को भगवान मानते हैं, किंतु जो भगवान को मानते हैं वो कभी अपने को भगवान नहीं मान पाएंगे। जो भगवान को मानते हैं वो तो अपने को भगवान का सेवक मानते हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीव का स्वरूप है भगवान कृष्ण का नित्य सेवक। तो सेवक कभी भी अपने को भगवान नहीं मान सकते। तो इसलिए महाराज अम्बरीश ये भगवान को मानते थे और अपने को भगवान का सेवक मानते थे। इसलिए इस मानना अर्थात तो भगवान को मान रहे हैं, यही उसका अर्थ। तो इस प्रकार अर्थ करते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने वस्तुतः महाराज अम्बरीश की प्रशंसा ही की, जबकि दुर्वासा मुनि भर्त्सना कर रहे थे महाराज अम्बरीश को क्रोधित होकर, उनके अवगुणों को देख रहे थे या अवगुणों को स्थापित कर रहे थे उनमें, जबकि महाराज अम्बरीश में कोई अवगुण नहीं थे, ये आरोपित कर रहे थे उनमें ये अवगुण। किंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसका निराकरण ही कर दिया कि महाराज अम्बरीश में कोई अवगुण थे ही नहीं। तो इस प्रकार हम आगे देखेंगे कि दुर्वासा मुनि अपने क्रोध के कारण अब महाराज अम्बरीश जैसे महान भक्त का भक्त के अनिष्ट की चिंता कर रहे हैं। कैसे महाराज अम्बरीश का अनिष्ट हो उसकी चिंता कर रहे हैं और श्राप देने जा रहे हैं। तो वस्तुतः इसमें हम देख सकते हैं कि एक भक्त और एक भक्त नहीं है। महाराज अम्बरीश भगवान के परम भक्त और दुर्वासा मुनि किसका ध्यान कर रहे थे यमुना के जल में, ये निराकार ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे, ये भगवान के चरण कमल का ध्यान नहीं कर रहे थे। तो यहां पर श्री सुखदेव गोस्वामी ने दोनों के धारणा की पद्धति को भी बतलाया। अम्बरीश महाराज ने जल पी लिया और किसका ध्यान किया, भगवान के चरण कमल का। दुर्वासा मुनि जल में स्नान कर रहे हैं यमुना के जल में और वहां किसका ध्यान कर रहे हैं, निराकार ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं। अर्थात वो मानते हैं कि जो ब्रह्म ज्योति है वही परम ब्रह्म है, उसका ध्यान कर रहे हैं, भगवान के चरण कमल का ध्यान नहीं कर रहे। क्योंकि जो निर्विशेषवादी होते हैं ये भगवान का रूप है इसको नहीं मान रहे। तो इसका अर्थ है कि दुर्वासा मुनि ये भगवान के भक्त नहीं थे, यद्यपि भगवान को मानते थे कि भगवान विष्णु हैं मानते थे, किंतु उनका भक्त नहीं थे, और निर्विशेष स्वरूप का ध्यान कर रहे थे। और यही कारण है कि उन्होंने महाराज अम्बरीश में जो सद्गुण थे उन सद्गुणों को देखने में वो असमर्थ रहे, क्योंकि भक्त ही भक्त के गुणों को पहचान सकता है, जो अभक्त भक्तों में गुण नहीं देख सकता। जबकि दुर्वासा मुनि में ये अवगुण थे, दोष थे, उनमें क्रोध आ जाता था, इतने बड़े तपस्वी होकर भी अपने क्रोध पर उनका संयम नहीं था, वो अहंकार के वशीभूत थे, किंतु अपने दोष को देखे बिना वो एक महान भक्त के दोष को देख रहे थे या दोष उनमें आरोपित कर रहे थे, जबकि महाराज अम्बरीश में कोई दोष नहीं थे। तो जो भक्त होते हैं वो अपने दोष को नहीं देखते हैं, वो भक्तों में दोष देखते हैं, ये अभक्तों का लक्षण। फिर भी भक्त लोग यदि उन पर कोई दोषारोपण होता है तो उसको सहन कर लेते, वो प्रतिवाद नहीं करते। यहां तक कि कोई भक्तों को भर्त्सना करता है उनको, उन पर प्रहार करता है, श्राप देता है, फिर भी भक्त लोग न तथा प्रतिकुर्वन्ति, मद्भक्ता प्रभवन्ति। तो भगवान कहते हैं मेरा जो भक्त है ये प्रतिवाद नहीं करते हैं, चाहे कुछ भी आरोप लगाया जाए भक्तों के ऊपर, मेरे भक्तों के ऊपर चाहे कुछ भी आरोप लगाया जाए, कुछ भी अत्याचार हो, मेरे भक्त प्रतिवाद नहीं करते, उसको सहन कर लेते। जैसे प्रहलाद महाराज, उनको जीवन में मार देने के लिए कितने सारे अत्याचार किए गए प्रहलाद महाराज को, और प्रहलाद महाराज ने क्या किया, कुछ प्रतिवाद नहीं किया, केवल इतना ही किया उन्होंने भगवान का स्मरण मात्र किया। जहां प्राण संकट में है, प्राण संकट की स्थिति में उद्विग्न रहना ये स्वाभाविक है, किंतु प्रहलाद महाराज कभी उद्विग्न नहीं रहे, भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास था उनका, इसलिए प्राण संकट उपस्थित होने पर भी वो उद्विग्न नहीं हुए और शांत चित्त से वो भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते रहे। और उसका फल क्या हुआ, भगवान ने प्रहलाद महाराज को सारे अत्याचारों से उनकी रक्षा की, सारे संकटों से उनकी रक्षा की। तो यही भक्त का व्यवहार है, वो भगवान पर पूर्ण निर्भरशील रहता है और भगवान उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति, अर्जुन तुम इस संसार में दृढ़ता पूर्वक घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता, भगवान स्वयं अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो भक्तों की ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि अवश्य राखी वे कृष्ण विश्वास पाल, भगवान कृष्ण अवश्य मेरी रक्षा करेंगे, ये दृढ़ विश्वास भक्तों को होना चाहिए, और भगवान अवश्य मेरा पालन पोषण करेंगे इसके प्रति भी दृढ़ विश्वास भक्तों को होना चाहिए। इसलिए भक्त कभी भी अपने भविष्य के लिए चिंतित न रहे, वही व्यक्ति भविष्य के लिए चिंतित रहता है जिसका भगवान पर विश्वास नहीं है, जिसका भगवान पर विश्वास है उसको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आज समय अधिक हो चुका है, हम यहीं बंद करते हैं। हरे कृष्ण, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। दुर्वासा मुनि ने तो उनकी भर्त्सना की इन शब्दों से, किंतु विष्णुचक्र ठाकुर अम्बरीश महाराज की प्रशंसा कर रहे हैं इन शब्दों को अलग अर्थ करके। हाँ, इन्हीं शब्दों के अब क्या सुन रहे थे हम, उन्हीं शब्दों का वो जो अपराध कर रहे थे वो अलग बात है। अब विष्णुचक्र ठाकुर जो महाराज की भर्त्सना हो रही है उसको ग्लोरिफिकेशन में बदल रहे हैं। तो एक भक्त क्या देखना चाहता है, मान लीजिए कोई किसी भक्त का अपमान हो रहा है तो आप उसको क्या देखना चाहेंगे कि भक्त का ग्लोरिफिकेशन हो यशगान हो। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वही कर रहे हैं। दुर्वासा मुनि अपराध कर रहे हैं वो अलग बात है, वो तो भगवान दंडित कर रहे हैं उनके लिए, वो तो हम आगे पढ़ेंगे कैसे भगवान दंडित कर रहे थे। सुदर्शन चक्र पीछे चल रहे थे दुर्वासा मुनि को मारने के लिए इसी अपराध के कारण, वैष्णव अपराध के कारण। किंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कोई दोष नहीं देख रहे थे अम्बरीश महाराज में, इसलिए इन शब्दों को उनकी प्रशंसा में रूपांतरित कर रहे थे। हरे कृष्ण। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जय श्रील प्रभुपाद जी महाराज की, जय समवेत भक्त वृंद की, हिताय गौर कृपानंद।